بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلو، آگے اللہ کا فیصلہ اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالو برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ فیصلہ کیا؟ کچھ کہتے ہیں ہجرت کا فیصلہ کیونکہ مکہ میں حالات اب تنگ سے تنگ ہو رہے تھے، کچھ کہتے ہیں بدر کا فیصلہ کیونکہ اس میں مکہ والوں کو خوب مزہ چکایا گیا، اور کچھ کہتے ہیں قیامت کا فیصلہ ہے، اور یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو چیز چل پڑی وہ آنے ہی والی ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ تم انتظار کرو، جب قیامت آئے گی تو تمہارے ساتھ ہوگا کیا؟ فرمایا وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ یہ کون سی روح کی بات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نمبر ایک یہ وحی لے کر آتے تھے، اور وحی کے روح، جیسے جسم میں روح پڑتی ہے تو زندگی ہوتی ہے نا، اسی طرح جسم میں جب وحی کی بارش ہوتی ہے تو انسان روح ہوتا ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ جسم کی زندگی روح سے ہے اور روح کی زندگی وحی سے ہے، تو روح الامین ہی لاتا ہے، اور بچے میں جو روح ڈلتی ہے نا وہ بھی جبرائیل کے ذریعے سے ڈلتی ہے۔ فرمایا فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، تمہاری مرضی سے نہیں آئے گا، اور اس ہدایت کے ساتھ کے لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بس مجھ سے ڈرو، اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا اور وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ ہے جھگڑالو، پیدا ہوتے ہی بچہ جھگڑنے لگتا ہے، سب سے پہلے تو ماں سے لڑتا ہے، دودھ پیتے ہوئے لڑتا ہے، سونا ہے تو رونا ہے، کچھ بھی مسئلہ تو رونا ہے، بچہ تو رو رو کے اپنی بات بتاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بچے کے رونے کو ماں ہی جانتی ہے، اس طرح ایک انسان کے رونے کو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر تھوڑے سے بچے بڑے ہوئے تو دوسرے بچوں سے لڑنا شروع کر دیا، کچھ نے سونا ہوتا ہے تو خود سے لڑ رہا ہوتا ہے، ماں کہتی بس اب اس کو نیند آئی تو بس سو جاؤ چپ کر کے، مسئلہ کیا؟ رو رو کے سونا ہے، بھوک لگی ہے ماں دودھ دے رہی ہے نہیں پینا، رونا ہے، پہلے روئیں گے پھر لڑیں گے، تو فطرت میں جھگڑا ڈل دیا۔ پھر ذرا سے بڑے ہوتے تو وہ چچا تایوں کے بچوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور تھوڑے بڑے ہوئے تو اسکول کالج کے جھگڑے شروع ہو گئے، اور بڑے ہوئے تو ماں باپ سے جھگڑنا شروع کرتی ہیں، بھائی بہنوں سے جھگڑے۔ اور آپ دیکھیے، آپ سب اپنا یاد کریں، شادی سے پہلے کتنی لڑائیاں ہوتی تھیں، کوئی ہے بھائی بہن جو نہ لڑے؟ وہ سگا نہیں ہوگا، سگے بھائی بہن خوب لڑتے تھے، اور بعد میں پھر اتنا پیار ہو جاتا ہے، اتنا پیار کہ بس بات کرتے ہی دل کرتا ہے کہ رونے لگ جاؤ۔ اور انہی کو کہتے ہیں، کئی مجھے اچھی طرح یاد آتا ہے کہ بڑی بہنیں چونکہ ذرا وہ ہوتی تھی نا سخت سی کے بہنوں بھائیوں پہ نظر رکھتی تھی، تو چھوٹے کب ممی ان کی شادی ہوگی، ان کی شادی کرے، یہ ہمارے سر پہ ہر وقت سوار رہتی ہیں، جب شادی ہوئی تو روئیں۔ پھر اسی طرح ایک دو بہنیں تھیں تو وہ بڑی اس لیے بڑی چپتی تھی کہ بڑی باجی کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں، پہلے ان کے چھوٹے کپڑے مجھے ملتے ہیں، ان کی بچی چیزیں، تو باجی سے ہر وقت لڑائی، تو جب دن گن رہے ہیں کہ باجی کی شادی ہو، جب باجی کی شادی ہوئی تو باجی سے زیادہ وہ چھوٹی رو رہی ہے، جھگڑی جھگڑے۔ لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ایک جھگڑا بہت برا ہے جو بھائی بہنوں میں ہوتا ہے، اور وہ ماں باپ کی جائیداد کا جھگڑا ہے، وہ جھگڑا تو کبھی کسی کا نہ ہو۔ شیطان اتنا ظالم ہے کہ دنیا سے جانے والوں کی چیزوں پہ لوگوں کو لڑاتا ہے۔ آپ کے ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے چھوڑ گئے، اور واللہ ہی جس دن سے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو ورثہ ملا، اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، لیکن اگر جنہوں نے یہ چیز فیل کی ہے، دل سے پیسے کی حسرت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے کھڑے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی ہمارے، سوچا بھی نہیں تھا کبھی، اور جب ان کی چیزیں ملی اس دن سے تو دنیا مٹی کا محل رہ گیا، کہ یہ پیسہ جس کو ساری زندگی انہوں نے اتنی عبادت سمجھ کے کمایا، کیسے چند کھڑیوں میں ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ زندگی میں انسان بعض دفعہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، مرنے کے بعد یہ سارا آپ کا، جب آپ کو اتنا آپ کے پاس آ گیا تو پھر اس پیسے کو کیا رونا، یہ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس کہیں سے آیا تو یہ آپ کے پاس بھی نہیں رہنا۔ تو بہت نا سمجھ لوگ ہیں کہ جو جائیدادوں پہ جھگڑتے ہیں، تو اپنے لیے اس میں نیت کیجئے، میں نے جھگڑا نہیں کرنا، کہیں نہ جھگڑیں، لڑنے والے لوگ یاد رکھیں لڑتے ہی رہتے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں، اگر اپنے بارے میں خود نہیں جانتی نا تو اپنے ساتھ رہنے والوں سے پوچھیں، کیا میں جھگڑا لوں، کیا میں جھگڑتی ہوں، کیا میں جھگڑا کراتی ہوں؟ پہلے بندہ خود جھگڑتا ہے پھر جھگڑے کراتا ہے۔ آج بیٹھیے ذرا ہسبینڈ کے ساتھ، تھوڑا سا نیگوسیشن کریں، گھر میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے، میری زیادتی ہوتی ہے کہ آپ کی ہوتی ہے؟ اچھا جب میں جھگڑنے لگا مجھے بتا دیا کریں، اچھا جب آپ کی زیادتی ہو تو پھر میں بتاؤں؟ گھر میں کچھ نہ کچھ کر لیجئے، آپ دیکھیے گا گھر میں برکت آ جائے گی، جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہاں سے سکون چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کو بھی بیٹھ کے سمجھائیں، اور سب سے بدترین جھگڑا اور جوان اولاد کا ماں باپ کے آگے بولنا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی صورتوں میں پڑھیں گے۔ तो अल्लाह ताला हमें झगड़ों से बचाए। उसने जानवर पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए पोशाक भी है और खुराक भी है और तरह तरह के दूसरे फायदे भी हैं। इनमें तुम्हारे लिए जमाल भी है जबकि सुबह तुम इन्हें चरने के लिए भेजते हो और जबकि शाम को तुम इनको वापस लाते हो। वो तुम्हारे लिए बोझ ढो ढोकर ऐसे मुकामात तक ले जाते हैं जहां तुम सख्त जान फिशानी से के बगैर पहुंच ही नहीं सकते थे। सुभान अल्लाह। देखिए ये अल्लाह ने छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, एक दूध की फैक्ट्री, गोश्त की फैक्ट्री, और कैसे घास में जाती हैं। कभी आपने यूरोप में इन बिटवीन यूरोप सफर किया हो ट्रेन में, तो रास्ते में आपको ग्रीन पहाड़ और उनपे छोटी छोटी सफेद बकरियां, जो बकरियां भी नहीं बल्कि शीप, सफेद बालों वाली दिखती हैं। इतना खूबसूरत मंजर होता है। मुझे काफी दफा मौका मिला कि हम बाय ट्रेन गए एक जगह से दूसरी जगह, तो मुझे ये सूरत नहल याद आती है। तो मैं सोचती हूँ देखिये जमाल भी कितना है। देखिए दुनिया में जो चीजें हम आप बनाते हैं ना वो क्या है कि जिसमें जमाल हो तो कमाल नहीं। बस हमारे घर में कुछ चीजें डेकोरेशन पीसेस के तौर पे, उसका मकसद कोई नहीं, बस पड़ा हुआ खूबसूरत लग रहा है। आप अब जाके घर में ढूंढिए कितनी चीजें सिर्फ डेकोरेशन के लिए, ठीक है, आप कितनी चीजें जो काम के लिए, मतलब वैक्यूम क्लीनर काम के लिए, ब्लेंडर काम के लिए, झाड़ू पोछा काम के लिए, काम वाली चीजें हम कहाँ रखते हैं, छुपा के, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती, तो डेकोरेशन सजाते हैं। अल्लाह ने जमाल और कमाल को एक साथ कर दिया। अल्लाह की चीजें डेकोरेशन पीसेस भी काम किए, तो डेकोरेशन पीसेस लिया करें नो प्रॉब्लम, लेकिन वो लें कि जिसमें से कोई दूध तो निकले जो आप पी सके। बेकार मैं सोचती हूँ जब भी कभी मैं आऊँ और बहुत डेकोरेशन देखूँ तो मैं सोचती हूँ इनसे मिलता क्या है। शुरू में अच्छे लगते हैं एक दो दिन, 4, 6, 10 दिन के बाद फिर आप जुस्ट होते हैं, बाद में भी बल्कि दिल भरता है। तो खूबसूरत हो, सिमेट्री तो रखें, लेकिन इतने ना रख लें कि घर से ज्यादा वो स्टोर लगे कि शायद फॉर सेल का साइन लगा हुआ इस पे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये छोटी छोटी मशीनें बनाते हैं, तुम्हारा बोझ उठाते हैं। हकीकत यह कि तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और मेहरबान है। 3 सेकंड तक जरा गौर करें, इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, कितना शफीक और मेहरबान है, कितने भयानक शक्लों के जानवर पैदा कर देता, मिट्टी के तोदे, पत्थर के तोदे खड़े कर देता जिनको देखते हमारी चीखें निकलती, कितनी मासूम बकरियां, भेड़ें, कैसे नाजुक से जानवर अल्लाह हमारे सामने रखते हैं, ये अल्लाह का प्यार है। इसने घोड़े और खच्चर पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो और वो तुम्हारी जिंदगी की रौनक बने, और वो बहुत सी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा करता है जिसका तुम्हें इल्म तक नहीं, और अल्लाह ही किसी में है सीधा रास्ता बताना जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। इसको हाईलाइट करें और दुआ करें कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता तो दिखा दे, मुझे टेढ़े रास्तों से बचा के अगर तू सीधे रास्ते पे ले आया तो रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। तो क्यों नहीं दी, क्योंकि तुम सब ने मांगी नहीं है। याद रखिए हिदायत का ताल्लुक इंसान की तलब के साथ है, जितना आप हिदायत मांगते जाएंगे अल्लाह ताला आपके लिए हिदायत के रास्ते आसान करता रहेगा। आगे जाके इंशाल्लाह आपको लिखाऊंगी कहीं कि हिदायत पाने के क्या जराए होते हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ इसको एंजॉय करें और दुआ मांग लीजिए कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। तो हिदायत अल्लाह देता है, और अल्लाह कैसे देता है, खुदा के हाथ नहीं पकड़ के देगा, अपनी इस किताब के जरिए से हिदायत देता है। तो मेरे हाथ में अल्लाह ने ये किताब क्यों पकड़ाई, क्योंकि अल्लाह का इरादा है मुझे हिदायत देने का। इस खुशी को महसूस करके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कभी इससे अलग ना करता। वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए चारा भी पैदा किया। वो इस पानी के जरिए से खेतियां उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है। इनमें एक बड़ी निशानी है इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। क्या निशानी है इन सब में, आप देखिए कि जहां भी आता है ना इन नफी जालिकल आया, तो वहां खुद से पूछें कोई बड़ी बात होगी जो अल्लाह ने ये बात की। तो अगर आप गौर व फिक्र से काम लें तो आपको यकीनन बहुत सारी निशानियां दिखेंगी सारे में। मसलन आप देखिए कि पानी आसमान से उतरा कैसा फीका, बारिश का पानी पिया करें, बरकत भी है उसमें, शिफा भी है, लेकिन चख के देखे बिल्कुल फीका होता है। फिर आप देखिए जमीन पे जाता है, मिट्टी को थोड़ा सा टेस्ट किसी वक्त करे कड़वी होती है, लेकिन उसमें से जैतून कैसे निकला, किसने लाइट ऑलिव ग्रीन कलर का खूबसूरत सा कलर जो है वो मिट्टी में डाला, उसमें से जैतून निकले। खजूर की मिठास कहाँ से आई, क्या किसान साथ चीनी की बोरी डालता है, कोई ग्लूकोज डालता है, क्या डालता है, और अंगूर, अल्लाह अकबर, एक हल्का हाथ लगे आंसू निकल आते हैं उसके। उसी मिट्टी में से सख्त जैतून भी निकले और उसी से नरम अंगूर निकले। इसी तरह कुछ दिलों के अंदर से किसी तरह की खैर फूटती, किसी तरह कुछ, शर्त क्या कि दिल की इस मट्टी पे वही का पानी डाल लें। ये गौरव फिक्र है। आप अल्लाह से कहे, अल्लाह आपको पता है मैं अंदर से अंगूर हूं कि जैतून हूं कि खजूर हूं, जो भी मैं हूं ना तो बाहर ले आ। और इस किताब के साथ साथ नियतें करें, इरादे करें कि अल्लाह मेरा टैलेंट बाहर लेकर आ, मेरे साथ कब्र में ना दफन हो जाए ये सब कुछ। इसीलिए अल्लाह ताला ने हम सबको इस पे गौर व फिक्र की दावत दी। इसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है, और सब तारे भी इसी के हुक्म से मुसख्खर है। इसमें बहुत सी निशाने इन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं, और जो बहुत रंग बिरंग की चीजें इसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा की, इनमें भी जरूर निशानी इन लोगों के लिए जो सबक हासिल करते हैं। अब इसका क्या सबक है? अब देखिए, सूरज चांद और सितारे तीन चीजें आसमान की मखलूक हैं। अल्लाह ताला इस पे गौर व फिक्र करवाते हैं कि देखो, अल्लाह ने जमीन की तरह आसमानों को भी तुम्हारे काम के लिए लगा दिया है, तो क्या तुम उस रब के कामों में नहीं लग सकते? मिसाल देती हूँ, समझ लीजिए, अल्लाह ने हम सबको इस दुनिया में क्यों भेजा? काम के लिए, इम्तिहान है ना। लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब जब आपके दुनियावी इम्तिहान होते हैं तो आपकी माँ अमूमन क्या चाहती हैं? बच्चियों को माएँ क्या कहती हैं? तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा काम करती हूँ। वैसे तो आजकल माशाल्लाह बच्चियों को इम्तिहानों के बगैर भी माएँ यही कहती हैं कि आप बैठे, मैं ही काम करती हूँ। ये भी एक अजीबोगरीब कहानी हो गई, लेकिन बहरहाल आप देखिए कि इम्तिहान के दिनों में माएँ काम नहीं कराती ना। अब इसी मिसाल को आप ले आइए, मैं और आप इस दुनिया में आए इम्तिहान के लिए, तो अल्लाह कहते तुम इम्तिहान दो, तुम्हारे काम मैं करता हूँ। ये रेस, खाना पानी सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए इसलिए रखा कि हम फोकस होके अल्लाह ताला के कामों पे जमे, और इसमें अल्लाह ताला से इन सारी चीजों को लेकर चलें। फिर समंदरी चीजों पे आ जाइए, वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर रखा। कभी सोचिए, इतनी बल खाती हुई मौजों में बंदा जिंदा वापिस आ जाए, ये किसकी वजह से है? अल्लाह का हुक्म है। जब एक अल्लाह समंदरों की मौजों के सीने फाड़ कर हमें उसमें जहाज और कश्तियां चलाने की इजाजत दे देता है, इससे बड़ी किसी और चीज की क्या दलील होगी कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। क्यों समंदर को मुसख्खर किया? ताकि तुम इससे तरोताजा गोश्त लेकर खाओ, क्या कहते हैं उसको, सी फूड खाओ, और इससे जीनत की वो चीजें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। वो क्या होते हैं? पल। ये सबको पता है। आपको तो पल कैसे बनता है, मैंने इसकी डिटेल सुनाई थी किसी भी एक क्लास में, इसी पे सुनाई होगी। वो अल्लामा इकबाल का बस शेर ही अभी तो सुना के आगे चली जाती हूँ, जो मुझे सही भी नहीं आता, कि तुम्हें क्या पता क्या बीती है कतरे पे गौहर होने तक। कितनी मौतें होती हैं फिर एक कतरा मोती बनता है। कभी जाके, मुझे याद नहीं इस साल सुनाया या पीछे, लेकिन इसकी पूरी डिटेल सुनाई थी। इतनी मुश्किल से एक पल जो आपके मेरे किसी एक सेट में लग जाएगा ना, अल्लाह ने उसको कितने कुर्बानियों के बाद पैदा किया। कैसे वो मुंह खोलता है, पानी का कतरा अंदर जाता है, फिर उस पर कितने एक्शन होते हैं, फिर वो कितने थपेड़े खाता है बाहर से समंदरों के, और मारे खा खा के वो कुंदन बन के मोती बनता है। तभी तो फिर रियल पर्ल्स की कदर है ना। तो याद रखिए, अगर आपने और मैंने भी मोती बनना है, और वो रूह का मोती जिसको अल्लाह ने अपने लिए चुनना है, तो खुद को पेश करना पड़ेगा। थपेड़ों में डालिए अल्लाह के, ताकि अल्लाह ताला हमें खैर का बना दे। डायमंड अपनी शक्ल में क्या है, जब निकलता है बेरंग होता है, फीका। जौहरी उसको फिर तराशता है, उसकी सारी खूबसूरती उसके कट्स में, जितने कट ज्यादा उतने कैरेट ज्यादा है। डायमंड की खूबी क्या है, एक बिल्कुल ब्लैंक शीशा होता है, सिर्फ एक रोशनी की शुआ जब उसमें जाती है ना, बस एक तरफ से घुसती है, वो कतरा उधर से ऐसे टिक 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 करके वो उसमें आते हैं। ये है डायमंड। आप डायमंड को अंधेरे में देखें, जीरो है, कुछ नहीं है, सिर्फ रोशनी में चमकता है, क्योंकि वो रोशनी अंदर जाती है, और जितने उसके कट ज्यादा होंगे ना, उतनी उसकी चमक ज्यादा होगी। और वो जौहरी को पता है कितने कट लगाने हैं। आपके मेरे अंदर कितनी खैर है, हम डायमंड बने या कार्बन बने, कोयला बने, ये अल्लाह को पता है। तो आप और मैं जितनी मुश्किलें सहेंगे ना इस दीन की खातिर, उतने कट से ज्यादा लगेंगे। अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं, तुम्हारे लिए जीनत की वो चीजें निकाली जिनको तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि कश्ती समंदर का सीना चीरती हुई चलती है, ये सब उस लिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और इसके शुक्र गुजार बनो। अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया ये सब कुछ लेने देने, लो दो सब कुछ करो, लेकिन मुझे ना भूलो, शुक्र गुजार बन के दुनिया की नेमतों को लो, पर्ल पहन लो, सी फूड खा लो, तुम समंदरों की सैरें करो, तुम क्रूज में जाओ, तुम सब मरीन में जाओ, लेकिन लाल लकुम तश्कुरून। लेकिन जब हम समंदरों में जाकर जिना देखें और जहां गैम्बलिंग के अड्डे हों और वहां जाके नाचें कूदें उछलें, तो फिर खुद ही अल्लाह को मौका देते हैं कि वो इन कश्तियों और जहाजों को डुबो के रख दे। इसने जमीन में पहाड़ों की मेहें गाड़ दी ताकि जमीन तुमको लेकर ठुलक न जाए। इसने दरिया जारी कर दी और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। हाईलाइट कीजिएगा, हमारी आपकी हिदायत के लिए अल्लाह ने पहाड़ों में रास्ते बना दिए, नहरों में, दरियाओं में रास्ते बना दिए, तो क्या उस रब ने जब हमारी हिदायत के लिए किताब भेजी तो क्या हम उससे फायदा नहीं उठाएंगे? इसने जमीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं। जिस तरह जमीन में रास्ते बने हैं ना, इसी तरह दीन के रास्तों के लिए अल्लाह ने दीन वाले लोगों को हमारे सामने रख दिया। आप देखिए कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने जाहरी तौर पे भी हमारी हिदायत का इंतजाम किया है और बातनी तौर पे भी। आसमान के सितारे रास्ता दिखाते हैं, जमीन के सितारे रास्ते घुमा देते हैं। वो कौन से सितारे हैं? जिनको लोग स्टार्स कहते हैं। उन स्टार्स के पीछे लग के लोग अपना कैरियर खराब कर देते हैं। असल में इसमें मैसेज है कि जिस रब के बनाए हुए कवानीन अभी तक आउटडेटेड नहीं हुए, इस रब के भेजे हुए कवानीन शरिया ये आउटडेटेड कैसे होंगे? देखिए कितने साल हो गए सूरज को चमकते हुए, पुराना हुआ नहीं हुआ ना? क्या उसकी कोई फिजिक चेंज हो गई? क्या बहुत ही गर्मी लगने लगी, अब हीट नहीं दे रहा, गर्मी सर्दी में अपनी मर्जी से आता नहीं? जैसे सेट सिस्टम चल रहा है, एवर न्यू सूरत में सूरज चल रहा है। चांद देखिए, सितारे देखिए, तो आप कह सकते हैं जब से दुनिया बनी ये फिजिकल लॉज अल्लाह के वैसे ही काम कर रहे हैं। तो जब से अल्लाह ने कुरान भेजा आज तक वो, फिर आप और मैं ये नहीं कह सकते कि आज के दौर में कुरान पे अमल नहीं हो सकता। जिस तरह उसके फिजिकल लॉज है, इसी तरह उसके शरीयत के लॉज है। तो कभी मत कहिए कि आज के दौर में कुरान आउटडेटेड हो गया, ये कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकता। फिर क्या वो जो पैदा करता है और जो कुछ भी नहीं पैदा करता दोनों यकसां हो सकते हैं? आप जवाब दीजिए, बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते। क्या तुम होश में नहीं आते? यानी फिर दूसरों को जाके पूछते हो, दूसरों से डरते हो, दूसरों के रूप में आते हो? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। कहां पीछे आयत गुजरी? सूरत इब्राहिम में। वहां भी ये बात, एक नेमत नहीं गिन सकते, बाकी की क्या बात है। हकीकत है कि वो बहुत दरगुजर करने वाला और रहीम है, हालांकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ और छुपे से भी वाकिफ है। हम कहते क्या नेमते गिने। कल हमने शाम को एक लेक्चर किया जिसमें हिसाब की बात थी, अल्लाह महासिब निसाब यसीरा, तो उसमें ये बात कोट की थी कि क्यामत के दिन इंसान की सारी नेकियां सिर्फ एक आंख की नजर हो जाएंगी। एक नेमत आएगी दुनिया में जो हमें अल्लाह ने दी थी और हमारी सारी जिंदगी की नेकियां खा जाएगी, और फिर भी अभी उसका हक बाकी होगा। तो कैसे मैं और आप अल्लाह की नेमतों का अदा करते हैं? सोचिए इस वक्त यहाँ कुरान सुनने के लिए आना और सुनाने के लिए आना, ये कम नेमत है। फजर पड़ी, ये कम नेमत है। सहरी में उठे, ये कितनी बड़ी नेमत। बिस्तर पे लेटे नेमत, उठे नेमत, उठ के बैठे नेमत, चलना चाहा नेमत, बैठे ब्रश पकड़ा, दांतों को लगाया, हर चीज अपने काम पे काम करती रही। एक दिन में करोड़ों हमारे पास अल्लाह की नेमतें, क्या गिनोगे क्या नहीं गिनो? तो क्या तुम नेकियां गिन गिन के करोगे? सोच सोच के नेकियां करोगे? नहीं, इतनी नेमतें दे के फिर दरगुजर करता है, रहम करता है, वरना तो इंसान कहाँ का खो चुका होता। इसीलिए फरमाया शिर्क से बच जाओ। और वो दूसरी हस्तियां जिन्हें लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, वो किसी चीज के भी खालिक नहीं बल्कि खुद मखलूक है, मुर्दा है ना जिंदा। उनको तो ये तक मालूम नहीं कि कब दोबारा उनको जिंदा करके उठाया जाएगा। तुम्हारा खुदा बस एक ही है, मगर वो लोग जो आखिरत को नहीं मानते, इनके दिलों में इनकार बस कर रह गया और वो घुमंड में पड़े हैं। अल्लाह यकीनन इनके सब करतूत जानता है, छुपे भी और खुले भी। वो इन लोगों को हरगिज पसंद नहीं करता जो गरूर नफ्स में मुबतला हो। ये नफ्स का गरूर क्या होता है? बड़ापन होने का गरूर। बहुत पढ़ी, मैं बहुत पढ़ी लिखी, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ दफा जितनी उम्र बढ़ती जाती उतना तकब्बुर बढ़ता है। बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने से तकब्बुर आता है, खास तौर पे माँ बाप से बात करने में, टोन में, उस्तादों से बात करने में, चलने में फख्र, सर उठाकर चलना, सलाम का जवाब देने से पता चल जाता है कि इंसान के अंदर बड़ापन बना हुआ है। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला को ऐसी कोई चीज पसंद नहीं है। यहाँ से क्या पता चलता है कि जो लोग दुनिया में अल्लाह ताला की इन बातों को नहीं सुनते और शुक्र नहीं करते, कल क्यामत के दिन वो पकड़े जाएंगे। और ये भी सुखा दिया कि पहले दौर में लोग सूरज चांद को पूछते थे, उस दौर का शिर्क यह था, आज लोग सूरज चांद के लॉज को पूछते हैं। साइंस आज के दौर का बहुत बड़ा शिर्क है, क्योंकि लोग अपने आप को तरक्की के रूज पे समझते, कहते हैं हमें अल्लाह की जरूरत नहीं। तो कहा साइंस को नहीं पूजो बल्कि रब को पूजो। इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ ये जो बात हुई ना कि लोग अपने आप को मुश्किलात में डाल लेते हैं, अल्लाह की तरफ नहीं लेके चलते, तो ये चीज मेरे और आपके अपने अमल के लिए भी होना चाहिए कि अगर हम वाकई बचना चाहते हैं तो हम अल्लाह की बात माननी पड़ेगी।